जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदना जय व्रजनरंजना जय यशोदानंदना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय मुन्ना तिरवन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
तुलहरणाम संकीर्तन की जय विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टादश श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिलप्रपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य शिलप्रपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की गंगामय यमुना माय की मायापुर नवदीप धाम की मथुरा वृंदावन धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की कलिग पावन हरिनाम संकीर्तन की शिलप्रपाद గంతవిత్రన్ మ్యారథాన్కి నిథాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే ఆల్ గోరిష్ట అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గోరిష్ట అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గోరిష్ట అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గోరిష్ట శ్రీ గురు అండ్ గౌరంగ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ హరే కృష్ణ తో ఆజ్ హమ్ చర్చా కర్ రహే హై శ్రీమద్ భాగవత్ స్కంద చౌథా అధ్యాయ 29 శ్లోక క్రమాంక 56 శీర్షక్ హై నారద్ తథా రాజా ప్రాచీన్ బ్రహ్మి కే మధ్య వార్తాలాప్ कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। राजवाच शुतमन विक्षितं ब्राह्मण भगवान यद भाषत नैतज्जानत्योपाध्याय किं न बृह विदुर यदि राजवाच शुतमन विक्षितं ब्राह्मण భగవాన్ యత్ భాషత నైతజ్జానత్యుపాధ్యాయ కిం న బ్రూయో విదుర్యది రాజవాచ శుత్మన్ వీక్షితం బ్రహ్మన్ భగవాన్ యత్ భాషత నైతజ్జానత్యుపాధ్యాయ కిమ్నా బ్రూయుర్విదూర్యదే అర్థ అనువాద్ తథా తాత్పర్య హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి శిలప్రపాద్ కి ద్వారా శిలప్రపాద్ కి శబ్దార్థ ఇస్ ప్రకార్ సే హై రాజా వాచ్ రాజా నే కహా శ్రుతం సునా గయా అన్వీక్షితం విచార్ కియా గయా బ్రహ్మన్ హే బ్రహ్మన్ భగవాన్ అత్యంత శక్తిమాన్ యత్
जो अभाषत तुमने कहा है न नहीं एतत यह जानन्ति जानते हैं उपाध्याय कर्मकांड के शिक्षक किम क्यों न ब्रुयु उन्होंने शिक्षा नहीं दी विदु वे जानते थे यदि अगर अनुवाद इस प्रकार से है राजा ने कहा हे ब्राह्मण आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों शिक्षकों ने मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त किया वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। तात्पर्य वास्तव में समाज के तथाकथित शिक्षक या अग्रणी लोग जीवन के उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते। ऐसे लोगों को भगवद गीता में माया अपहत ज्ञान कहा गया है। वे अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं किंतु माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया गया होता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कृष्ण की खोज। वेदस्य सर्वैर अहमेव वेद्य सारा ज्ञान श्री कृष्ण की खोज करने के निमित्त है क्योंकि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल है। जन्मादस्य यत भगवद्गीता 10.2 में कृष्ण कहते हैं अहम आदिर देवानाम मैं समस्त देवों का स्रोत हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त देवताओं के जिनमें ब्रह्मा शिव इत्यादि सम्मिलित है मूल तथा आदि स्रोत है। वैदिक अनुष्ठान विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए है किंतु जब तक कोई प्रगतिमान विद्वान नहीं होता वह यही नहीं समझ पाता कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। नारद के उपदेशों को सुनकर राजा को चेत हुआ जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। अतः राजा ने तथाकथित पुरोहिती आदेशों को नकार देने का निश्चय किया क्योंकि उनमें जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई शिक्षा न दी जाकर अनुयायियों को केवल अनुष्ठानों में लगाए रखा जाता है। आज के समय में संसार भर में गिरजाघरों मंदिरों तथा मस्जिदों के प्रति लोग आकृष्ट नहीं होते क्योंकि मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते। जीवन उद्देश्य अपरिचित रहने के कारण वे भक्तों को अंधकार में रखते हैं। फलतः जो सचमुच शिक्षित है वे अनुष्ठानों के प्रति अरुचि रखने लगे हैं किंतु साथ ही उन्हें इससे कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। अतः समस्त वर्गों के लोगों को जागरूक करने के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज भैरिष्मान ने के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए और अनेक धर्मों के वेश में चलने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का परित्याग करें। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठानों में लगे रहते थे। दरअसल श्रील सनातन गोस्वामी ने ही वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया। वैष्णव लोग पुरोहितों के निर्जीव कार्यों की परवाह न करके पूर्णता कृष्ण भक्ति करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण बनते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणम अर्थात परमहंस की शरण लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्री उतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि जो भी बोलूँ वो परंपरा में रहें भगवान के और आपके प्रसन्नता के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो अध्याय है 29वां, इसमें कुछ श्लोक के पहले जो नारद मुनि और राजा प्राचीन भरी इनका संवाद यहाँ पर चल रहा है। तो आज के श्लोक में जो राजा है वो बोल रहे हैं, इसके पहले कुछ श्लोक 52 से लेकर 55 तक नारद मुनि जो है एक एनालॉजी, एक रूपक जो है वे राजा को बताते हैं। तो इस एनालॉजी में, इस रूपक में नारद मुनि बताते हैं, हिरण का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि कैसे जो हिरण है वो उद्यान में जाकर मधुर संगीत सुनने में व्यस्त है, लेकिन वो ये भूल गया है कि उस हिरण के सामने एक शेर जो खड़ा है और हिरण को खाने की चेष्टा कर रहा है, और हिरण के पीछे एक शिकारी जो है तीक्ष्ण बाण लेकर वो खड़ा है हिरण का वध करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो ऐसे ही जो सिचुएशन है इस भौतिक जगत में लोगों की है, जो फैमिली जीवन में है, राजा को बता रहे हैं कि तुम्हारी भी ऐसी परिस्थिति है, तुम जो फैमिली लाइफ में बिजी हो गए हो, तुम्हारे सामने जो मृत्यु रूपी काल है उसे देख नहीं पा रहे हो, और जो दिन बीत रहे हैं इंद्रतृप्ति में उसका भी तुम्हें कुछ भान नहीं है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, हे राजा तुम इस हिरण की स्थिति से कुछ सीखो और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ। और अभी आज का श्लोक, तो राजा बोल रहे हैं कि राजा कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण आपने जो कुछ कहा मैं उसे मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है। तो सुनना और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों शिक्षकों ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्ति किया वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये राजा यहाँ पर कह रहे हैं। तो अभी हम इस आज के श्लोक पर कुछ मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला मुद्दा हम देखेंगे कि जो गुरु होते हैं उनके हाथ में ही होता है कि शिष्य को बर्बाद करें या उसका उद्धार करें। जैसे आज ये राजा बोल रहे हैं कि जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया, भक्ति में ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कर्मकांड में ही लगा दिया, इसके कारण मुझे ये सब समझने के लिए इतना देर हो गई। और दूसरा है कि श्रवण, तो जो बोलते हैं कि ध्यानपूर्वक श्रवण, जो राजा ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है, तो श्रवण के बारे में हम देखेंगे कि श्रवण के 8 प्रकार होते हैं, उसके बाद श्रवण के लाभ क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, और अंत में अभी जो मैराथन महा चल रहा है तो उसके बारे में कुछ अगर समय मिलता है तो चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला मुद्दा यहाँ पर हम देखेंगे, जो गुरु है उनके हाथ में शिष्य का भविष्य होता है। तो गुरु अगर भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं बताता है तो हम उसे त्याग सकते हैं। तो ये शास्त्र में उदाहरण आता है कि जो शुक्राचार्य हैं उनको बलि महाराज त्याग देते हैं। कहानी कथा जो लंबी है लेकिन हम शॉर्ट करके यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो जब वामन देव अवतार लेते हैं और देवताओं के रिक्वेस्ट पर वे बलि महाराज के पास जाते हैं और कुछ दान मांगते हैं, और बलि महाराज ऑलरेडी फेमस थे ये दान देने के लिए। तो जब वामनदेव आते हैं, बटू ब्राह्मण के रूप में आते हैं और राजा से मांगते कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, और जो बलि महाराज हैं वे भी बहुत ही उत्साह से उन्हें भिक्षा देने के लिए रेडी हैं। तो बोलते कि मांगो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर वामनदेव बोलते कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। जब ये वार्तालाप हो रहा था तो शुक्राचार्य को है ना इंट्यूशन आ गया कि बोले कुछ तो अभी अनाप शनाप या कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो तुरंत वो वहां पर पहुंच जाता है, शुक्राचार्य पहुंच जाते हैं और बलि महाराज के पीछे से उनको इंडिकेशन देने लगते हैं कि संभाल के, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा एक शत्रु है। और फिर ऐसे जो बलि महाराज हैं वो अपना कान देखे सुन रहे हैं कि शुक्राचार्य क्या बोल रहे हैं। तो शुक्राचार्य बोलते कि हरि है, ये विष्णु है और तुमसे अभी चीटिंग करने वाला है, तो तुम इससे जो भी कुछ मांगेगा उसे देना नहीं है। और बलि महाराज हरि का नाम सुनते खुश हो गए, बोले अरे हरि साक्षात आए हैं और कुछ मांग रहे हैं, और मुझे उन्हें क्या करना है, उनकी सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है, उन्हें कुछ देना है, लेकिन मेरे गुरु क्या बोल रहे हैं कि इनसे दूर रहो, इन्हें कुछ देना नहीं है। तो ये शास्त्र के विरोध में वो बात कर रहे थे। तो जब ये उन्होंने सुना तो बलि महाराज ने उनको त्याग दिया। तो ये हम देखते कि आजकल के गुरु, या जैसे अभी प्रभुपाद बताते हैं कि शिक्षक या फिर नेता जो है वे खुद के जीवन का उद्देश्य तो भूल गए, लेकिन उनके हाथ में जिनका जीवन है उनके जीवन का उद्देश्य भी बिगाड़ रहे हैं। कल ही की बात है, हमारे कुछ भक्त लोग एक स्कूल में गए थे बीजी कॉन्टेस्ट के लिए, प्रिंसिपल को जाके मिले, सब बताएं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो सब सुनने के बाद प्रिंसिपल बोलती हैं कि हमारे स्कूल के लिए क्या कुछ दान करो। मतलब ये सब इतना बताने के बाद कि इतना अच्छा उपक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके स्कूल में, करना चाहते हैं, लेकिन उनका मोटिव जो होता है वो भौतिक ही होता है। पिछले साल जब मैं एक स्कूल में क्लास टू क्लास अनाउंसमेंट कर रहा था, एक क्लास हो गया दूसरे क्लास में जा रहा था, आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा टीचर नहीं है, लेकिन देखा टीचर बैठा हुआ है, चेयर पर बैठा है और हाथ में हाथ की तरफ देख रहा है। तो फिर मैं जब अंदर गया देखा कि बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं और जो टीचर है वो व्यस्त है, मोबाइल में मस्त है। तो उसको पता नहीं चला कि मैं आ गया। तो जब मुझसे पास गए तो बोला हाँ बोलिए महाराज क्या चाहिए आपको। तो उनको पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है, क्या किसके लिए आ रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो बच्चों का क्या भविष्य होगा। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि कैसे जो शिक्षक है अपना उद्देश्य, मतलब उनका जो बच्चों का या स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों का लाइफ बनाना है वो भूल गए हैं। तो आजकल तो सीधा ही बोल देते हैं शिक्षक लोग कि आप स्कूल के ऊपर, या जब आप स्कूल आते हो तो हमारे ऊपर निर्भर मत रहो, तो क्या करो बाहर जो प्राइवेट ट्यूशन्स होते हैं वो लगाओ, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लो। इसका मतलब क्या है, आप आओ और जाओ लेकिन हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं देना है। हमारे एक मित्र हैं शिक्षक हैं, लेकिन कभी मैं देखता नहीं हूँ कि वो स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो मैंने पूछा अरे आप क्यों नहीं जाते, बोला सब सेटिंग किया है, क्योंकि जब वो ज्वाइन होने वाले थे स्कूल में तो पैसे देके ज्वाइन हो गए, मतलब तो कुछ लाखों रुपए दिए और ज्वाइन हो गए। बोले कि तो अब सब सेटिंग किया है, जाए नहीं जाए 1 तारीख को जाते हैं, पेमेंट लेके आ जाते हैं। तो अगर ऐसे शिक्षक रहेंगे तो हम विद्यार्थियों के तरफ से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। हमें याद है जब हम गांव में थे तो उस समय गांव में 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक एक ही शिक्षक रहते थे और वही जो चारों कक्षा को पढ़ाते थे, और उसमें से कुछ बच्चे जो हैं उनके घर को संभालते थे और जो शिक्षक जो है पाठशाला संभालते थे। घर को मतलब उनके घर में जो भैंसे हैं बैल हैं तो वो चराने के लिए उनको भेजते थे, लेकिन 4 साल कभी फेल नहीं होते थे बच्चे कभी, हालांकि कभी स्कूल में बैठे नहीं, क्लास में बैठे नहीं, कभी पढ़े नहीं, लेकिन अभी भी अगर वो अभी बड़े हो गए अगर उनको पूछेंगे आपका नाम लिखो तो वो भी नहीं आता है। तो ऐसी उनकी सिचुएशन है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जब रूपात जैसे जो गुरु और आचार्य आते हैं तो वे जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो सिद्धांत देना है उसमें वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और जैसे पानी का पानी, दूध का दूध, आगे जाके हम चर्चा करेंगे श्रवण में, तो वैसे जो प्रोपाद हैं हर जगह पर जो बोलना है वो बोल देते हैं, सोचते नहीं कि सामने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन जो सही है वो बोलते हैं। तो एक बार जब प्रोपाद हरिद्वार में थे तो उस समय बहुत अमेरिकन शिष्य जो है प्रोपाद के पास आए, बोले प्रोपाद प्रोपाद एक ऐसा योगी आया है वो दिखा रहा है कि मैं कैसे पानी पे चल सकता हूँ। बोल तो एक किनारे से दूसरे किनारे वो चल कर जाता है पानी के ऊपर से। तो प्रोपाद बोले सब चलो हम जाते हैं, तो सबको खुशी होगी कि प्रोपाद भी देखने आ रहे हैं कि वो योगी जो है वो कैसे पानी पे ऊपर चल रहा है। तो प्रोपाद गए किनारे पर और जो नाव वाला है उसे बुलाया, बोले इधर आओ, और सबको बोला नाव में बैठ जाओ। सबको नाव में बिठाते हैं प्रोपाद और नदी के उस पार, गंगा के उस पार लेके जाते हैं। और फिर नाव वाले को पूछते हैं कि आपका पर हेड कितना हो गया, बोले 50 पैसा। तो प्रभात बोलते देखिए जो ये योगी है इतने सालों तक हिमालय में गया, तपस्या किया, सिद्धि प्राप्त की, उसका मूल्य कितना है, सिर्फ 50 पैसे। तो प्रभात ये सिखाना चाहते हैं कि आप ऐसे एक्सटर्नली आप आकर्षित ना हो। तो एक बार एक बाबा जो है आता है और तो उसे एक व्यक्ति पूछता है कि भगवान कौन है। तो बाबा बोलता है कि मैं भगवान, तुम भगवान, सब भगवान है। तो जब और उसने दूसरे दिन जैसे राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौर निताय की जय। तो उस शोक और तथाकथित भगवान का दूसरे दिन प्रोग्राम था, पानी के ऊपर चलने का प्रोग्राम था और वो फ्री में नहीं था, उसके लिए टिकट्स थे, बहुत लोगों ने टिकट निकाल कर अंदर आ गए थे और वो दिखाना चालू होने वाला था। और उस व्यक्ति ने पानी के ऊपर चलना शुरू किया, 60-70% कवर किया, डूब वो गिर गया। तो उनके अनुयायी जो है वो बोलने लगे भले महाराज ऐसा मत कीजिए, हम फ्री में नहीं कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो फिर हमारी पिटाई होगी। तो ऐसे ही है, अलग अलग जो खुद को भगवान मानने लोग हैं, खुद को मानते हैं, वैसे अलग अलग कार्य करते लेकिन उसमें फेल हो जाते हैं। तभी भारत में 6 चैतन्य महाप्रभु हैं और 11 कल के अवतार हैं। तो उसमें से एक जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो खुद को गौर सुंदर मानते हैं, लेकिन वो गौर सुंदर नहीं गोल सुंदर हैं, क्योंकि उनका पेट जो है बाहर आ गया है। तो वो बोलते हैं कि वो नृत्य करते हैं लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाते, थक जाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति जो है कल के अवतार, खुद को कल के अवतार मानते हैं और प्रवचन दे रहे थे। तो उस प्रवचन के बाद एक व्यक्ति पूछता है कि हमने सुना है पढ़ा है कि शास्त्रों में बताया जाता है कि कल के अवतार जो है कलयुग के अंत में आते हैं, आप तो बहुत जल्दी आ गए, और ऐसा सुना है कि अंत में आने के बाद वो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो उनकी तलवार ही बोलेगी और सबको वो मारेंगे, लेकिन आप तो प्रवचन दे रहे हैं। बोले हाँ सही है, आपने पूछा जो सही है, मैं इधर प्रवचन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी और एक मौका दे रहा हूँ आपको कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो मेरी तलवार ही बात करेगी। तो जब ऐसा न्यूज चैनल वाले ने सुना तो उन्होंने सभी जितने ये 11 कल के अवतार हैं उनको इन्विटेशन भेज दिया कि आपका इंटरव्यू लेना है, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं था। जब सब लोग आ गए एक एक करके तो 11 के 11 कल के अवतार आमने सामने आ गए और बोलने लगे मैं असली हूँ, सब 11 के 11 बोलेंगे मैं असली हूँ, और उनमें झगड़ा हो गया। तो एक ने क्या किया, अपना सुदर्शन निकाला, उसने मोटर बिठाया था और वो चक्र घुमाता था। और दूसरा जो कल के अवतार है बोला मैं भी कुछ कम नहीं, मेरे पास भी मोटर है, उसने भी चालू किया। तो वहाँ वहीं पर ही और लाइव चल रहा है, चैनल वाले शूट कर रहे हैं और वो झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे ही है कलयुग में अलग अलग प्रकार के गुरु या सोकल तथाकथित भगवान जो हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया और लोगों ने सोचा ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कुछ नाम आ जाता है, मतलब कुछ तो अजीबोगरीब करते व्यक्ति, तभी वो नाम आ जाता है। तो जब लोग पढ़ने लगे बोले एक व्यक्ति जो है वो 1x1 जो बॉक्स होता है 1x1 फीट का, उसके अंदर वो खुद को बिठा दिया उसने। तो फिर उसको इंटरव्यू लेने गए, बोले कि आप ऐसे कैसे कर, आपने ऐसे कैसे किया, बोले आपका राज क्या है ये सब करने के लिए। बोले मैं पिछले 20 साल से हिमालय में तपस्या किया और क्योंकि मुझे वामन अवतार या वामन देव बनना था और मैं बन गया हूँ, और अभी मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि मैं 1x1 के बॉक्स में बैठ सकता हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि अपने नाम के लिए, नाम या खुद को फेमस होने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन हालांकि ये भक्ति मार्ग नहीं होता है। तो एक बार एक प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन। तो प्रभुपाद बोलते हैं सचमुच? बोले हाँ। बोले ठीक है, ये कॉटन है और एक शर्ट है, दोनों एक ही है, तो अभी शर्ट उतारो और एक कॉटन पहन लो। तो बोलते स्वामी जी आप कुछ ही बोल रहे हैं, या ऐसे कैसे पहन सकते हो, तो तुम ही तो बोल रहे हो कि सब कुछ एक है। तो प्रभुपाद उसे पकड़ने लगे, वो भाग गया वहां से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो हमारी आसक्ति है वो बकरी की गर्दन है, और साधु की वाणी जो है वो चक्कू है, नाइफ है। तो हमें हमेशा जो हमारी जो आसक्ति है अगर तोड़वाना है, तोड़ना है, तो हमें साधु की वाणी का आश्रय लेना है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि चलो प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उधर बहुत सारे लोग बोलने लगे उन्हें, स्वामी जी आप आ गए, लेकिन जो आप नियम बता रहे ना बहुत ही कठिन कठिन है, यहाँ के लोग वो पालना तो दूर ही है, उसे दूर जाना भी मुश्किल है। तो इतने वो उस नियमों के अंदर तोड़ने में इतने व्यस्त है कि वो सुनने के लिए भी रेडी नहीं होंगे। तो प्रभुपाद को फिर बोल रहे थे, फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, चार के बजाय तीन रखो, दो रखो, एक रखो। तो प्रभुपाद बोले नो, आई हैव नॉट कम हियर टू प्लीज अमेरिकन्स। तो बोले कि मैं यहाँ पे जो अमेरिकन व्यक्ति हैं, अमेरिकन लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आया हूँ, तो मैं ये सिद्धांत जो है, ये शास्त्र है, मैं ये देने के लिए आया हूँ और मेरे गुरु को प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। तो प्रभुपाद हर जगह पे जब जाते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे। एक बार लंदन के एयरपोर्ट पर उतरे, और उतरने के बाद जहाँ पर रिपोर्ट्स आ गए कि प्रभुपाद स्वामी जी आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, तो प्रभुपाद बोले कि मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत सारे चीज़ें भारत से लाए हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, जो भी है जितने महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु हैं वो सब लेके आए हैं, लेकिन एक अति मूल्यवान वस्तु जो है वो भूल गए थे, तो इसलिए मैं वो देने आया हूँ, वो है श्रीमद् भगवद गीता, मैं यहाँ पर देने आया हूँ। तो प्रभुपाद जो है कभी सिद्धांतों में कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हालांकि वो मायावाद का खंडन करते थे, लेकिन जो मायावाद के जो आदि शंकराचार्य हैं उनके प्रति कभी निंदा उन्होंने नहीं की, उनके प्रति कभी बुरा नहीं बोले। तब प्रभुपाद कभी कभी पूछते थे अपने शिष्यों को, क्योंकि शिष्य जो अलग अलग न्यूज़ लाते थे, प्रभुपाद ये इधर एक व्यक्ति है वो खुद को भगवान बोलता है, तो एक बार फिर प्रभुपाद पूछा अभी कोई है क्या भगवान, तो बोले हाँ स्वामी प्रभुपाद एक व्यक्ति है वो खुद को भगवान मानता है। बोले क्या नाम है उसका? बोले केशव स्वामी। अरे वो तो गंजा, तो खुद को केशव स्वामी बोलता है, केशव मतलब जिसके घुंघरालू बाल हो, और ये तो गंजा है, ये कैसे खुद को भगवान मान सकता है। तो एक गुरु है उसका सिद्धांत ये था, वो ऐसा वो बताता था कि कृष्णा जो है ब्लैक है, और ब्लैक मीन्स अननोन। तो प्रभुपाद बोले ये कौन सा फिलोसॉफी है, कृष्ण ब्लैक है और ब्लैक मतलब अननोन। तो अगर प्रभुपाद बोले अगर ये गुरु है तो उसे क्या पता होना चाहिए, जिसको कृष्ण का तत्व पता है वही गुरु हो सकता है। अगर ये गुरु बोलता है कि कृष्ण जो अननोन है तो ये गुरु नहीं हो सकता है। देख बाद एक मायावादी प्रभुपाद के साथ बहुत वाद विवाद कर रहा था, और परेशान होकर वो अपने जो पैम्पलेट लाए थे वो फेंक के चला गया, और प्रभुपाद अपने शिष्यों से बोलते कि सभी पैम्पलेट उठा लो। सब शिष्य एक दूसरे से देखने लगे, बोले अभी प्रभुपाद क्या हमको पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो लेकिन प्रभुपाद ने बोला है तो सब उठा लेते हैं। उठाने के बाद सबको एक एक बार दो, सब एक एक ले लेते हैं, और फिर जो किचन इंचार्ज है उसे बोलते कि ठीक है भाई ब्रेकफास्ट लेके आओ और सबको इस पैम्पलेट के ऊपर बांट दो। तो प्रभुपाद जानते हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि परमहंस भक्त जो जानते हैं कि कैसे मायावादी, उग्रवादी, छायावादी, कायावादी, आतंकवादी, इन लोगों को कैसे सेवा में लगाना है। तो एक व्यक्ति जो है उपदेश देता था, बहुत जगह पे प्रवचन देता था, और सरस्वती ठाकुर देखते हैं कि ये मार्केट से कुछ लेके आ रहा है, और जब नजदीक आने के बाद देखते हैं कि हाथ में कुछ तो है। तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि बाबू क्या छे, मतलब आपके हाथ में क्या है? तो फिर वो बोलता है एटा तो पवित्र फल आ छे, गंगेर फल, गंगा जरेर फल। तो बताते हैं कि बोले ये गंगा का फल है, तो मतलब मछली जो है अपने हाथ में लेकर वो जा रहा था। तो सरस्वती ठाकुर बोले कि ये देखिए कि कैसे लोग उपदेश करते हैं लेकिन मछली खाते हैं। जैसे जो है ना ये कथाकार बताते हैं कि बैंगन खाना नहीं चाहिए, उसके गुण नहीं है, लेकिन घर में अपनी पत्नी को डांटते हैं कि बैंगन क्यों नहीं बना है। तो सेम ऐसे ही ये कथा है सरस्वती ठाकुर के साथ हुआ था। ईश्वर प्रसाद विद्यासागर करके एक व्यक्ति थे, वो निराकार का प्रचार करते थे, लेकिन निराकार का प्रचार करते करते थोड़ा वो अलग बोल जाते थे। वो बोलते थे निराकार तुम्हारे चरण धरी। अभी निराकार जब ऐसा देखा कि ये ऐसा बोल रहा है, निराकार तुम्हारे चरण देखी, तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं तुम निराकार कैसे हो गए फिर, अगर निराकार है तो चरण कैसे देखेंगे। बोले आप सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे वैष्णव और निराकार दोनों में बैलेंस रखना है, तो इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक चचेरे भाई, सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, तो वो बहुत ही फेमस है, अभी भी फेमस है। तो वो बोलते थे कि फुटबॉल खेलना भक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि फुटबॉल खेलने के बाद एक टीम स्पिरिट मिलता है कि हमें एक साथ आकर कैसे कार्य करें, तो हम फुटबॉल खेलने से सीख सकते हैं। तो वो कभी भी सरस्वती ठाकुर के सामने कभी आए नहीं, तो लेकिन वो और उनके साथ कुछ संपर्क हुआ नहीं तो सरस्वती ठाकुर उनको अच्छा उपदेश दे सकते थे। तो ऐसे अलग अलग जो हम देखते हैं कि जो गुरु हैं, साथ तथाकथित गुरु हैं, वो अपना ही प्रचार करते हैं और लोगों को सही मार्ग से भटकाते हैं। और अभी हम देखेंगे श्रवण के बारे में। तो हमारे जो श्रवण आचार्य हैं, जो हमारी भक्ति है वो श्रवण से चालू होती है, और जो श्रवण आचार्य हैं परीक्षित महाराज हैं, तो परीक्षित महाराज हम देखते हैं उनके जब वो श्रवण करने लगते हैं भागवत के बारे में, उसके पहले थोड़ा अगर रिकैप लेंगे हम थोड़ा, तो परीक्षित महाराज एक राजर्षि थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और राजा होने के कारण वो शिकार करने के लिए जाते थे। तो शिकार के लिए गए और कुछ देर बाद अकस्मित उनको भूख और प्यास लगने लगी। जनरली अकस्मात या बाई चांस कभी कुछ होता नहीं है, साधारण व्यक्ति को भी पता चलता है अगर वो पानी पीता है तो कम से कम आधा घंटा एक घंटे के बाद उसे प्यास लग सकती है, या फिर कुछ प्रसाद पाता है तो वो सोचता है कि अगर 9 बजे लिया तो 4 बजे तक भूख नहीं लगेगी, तो उतना तो माइंड में रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अकस्मात परीक्षित महाराज को प्यास लग गई, और फिर प्यास लगने के बाद वो ढूंढने लगे कि आजू बाजू में कुछ मिलता है क्या। तो देखा कि कुटिया है, फिर कुटिया के पास आते हैं और वहाँ पर मांगते हैं जलम दे ही, लेकिन कुछ अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो परीक्षित महाराज थोड़ा अंदर जाते हैं, देखते कि एक ऋषि जो है, श्रमिक ऋषि जो है, वो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, और एक बार पूछते हैं कि कुछ जलपान मिलेगा, लेकिन ऋषि जो है ध्यानस्थ थे, इसी कारण उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। तो परीक्षित महाराज गुस्सा हो गए कि मैं आप राजा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, इस व्यक्ति ने मुझे ना पानी के लिए पूछा, ना फल के लिए पूछा, ना आसन दिया, ना माला डाला। जैसे गुस्सा हो गए और देखने लगे इसका मैं कैसे रिवेंज ले सकूं। जैसे थोड़ा बाहर आते देखते हैं एक मरा हुआ सांप जो है वो पड़ा हुआ है, उसे उठाते हैं और उस ऋषि के गले में डालकर चले जाते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो भगवान की ही इच्छा से हो रही है, क्योंकि राजा जो है भक्त है, भक्त के मन में ऐसा व्यवहार नहीं आ सकता है। तो ऐसा कहा जाता है ये दोष बुद्धि, उनका बुद्धि यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, इसी कारण उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा होने के बाद जो उनका श्रमिक मुनि पुत्र जो है, उनको उनके मित्र ने बोला कि आपके पिताजी के गले में सांप है, शायद उनका देहांत हो गया है। तो वो मुनि पुत्र भी बिना सोचे समझे उन्होंने तुरंत नदी पर गया, पानी लिया, श्राप दे दिया, जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो 7 दिन में उसे तक्षक डस के मर जाएगा। तो जब वापस आता है आश्रम के अंदर, आने के बाद पता चलता है कि पिताजी जीवित हैं, फिर वो रोना धोना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं आगे। लेकिन ये सब होने के बाद प्रहलाद महाराज को पता चलता है कि श्राप मिल गया है, तो वो उल्टा उनको श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान का अरेंजमेंट है, अभी मुझे सब कुछ छोड़ के भगवान की कथा सुनने जाना चाहिए। तो फिर वो आते हैं सब कुछ छोड़ के, 7 दिन 7 रात, जिस थोड़े से प्यास के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, तो ना सोए ना खाए ना पिए, 7 दिन 7 रात वो भगवान के बारे में श्रवण कर रहे थे, आस्वादन कर रहे थे। तो 8 प्रकार के श्रोता होते हैं, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। 4 अनुकूल श्रोता होते हैं, 4 प्रकार के जो श्रोता हैं, और 4 प्रकार के श्रोता जो प्रतिकूल होते हैं। तो इसमें ऐसा उदाहरण दिया जाता है, जो चातक पक्षी है, ये पहला उदाहरण है कि चातक पक्षी जो है वो बारिश का ही पानी पीता है। तो और उसमें ऐसा नहीं कि वो पूरा बारिश का पानी वो कैच करता है, स्टोर करता है, बाद में लेता है, ऐसा नहीं है। बारिश का डायरेक्ट जब जो बूंदे गिरती हैं वो उसके चोच में लेता है। और ऐसा नहीं कि पूरा चार महीना, उसमें भी जो स्वाति नक्षत्र है उसी नक्षत्र में ही पानी पीता है, और बाकी पूरे जितने 11 महीने होते हैं उसमें वो निर्जला करता है। मतलब किसी ने बोला कि नहीं स्वाति नक्षत्र का पानी जो हम जमा करके रखते हैं साल भर थोड़ा थोड़ा पियो, नहीं वो भी नहीं चलेगा। सिर्फ उसी समय वो जो पानी गिर रहा है, बादल दे रही है, वही पानी वो पान करता है। वैसे परीक्षित महाराज केवल जो भागवत है, व्यक्ति भागवत है, उनसे ही भागवत कथा सुन रहे थे, उनका पान कर रहे थे, उनको कानों को आनंद मिल रहा था। तो चातक पक्षी जैसे हम देखते कैसे ओनली एंड वन स्वाति नक्षत्र के मेघ का पानी ही पी रहे हैं। तो एक बार एक कथा हो रही थी, बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था, डेकोरेशन हो गया था, सब अरेंजमेंट हो रहा था, लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे ये देखकर कि बाहर सिर्फ एक स्टॉल है, ना वहाँ पर जीवदय का स्टॉल है, ना गिफ्ट स्टॉल का गिफ्ट स्टॉल है, ना IVF का स्टॉल है, लेकिन ये सब इसके बिना सिर्फ ना गोविंदाज भी नहीं था उधर, सिर्फ एक स्टॉल था। और उस स्टॉल पर तीन गुड़िया रखी थी और उस गुड़िया के नीचे लिखा था एक फ्री फुकट में, दूसरा था 100 रुपये और तीसरा था 1000 रुपये। लोग ये देख के अंदर जा रहे थे। अंदर जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कथाकार आ गए, कथाकार कथा शुरू करने वाले हैं, तो ये सभी लोग बेचैन थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर ये गुड़िया क्यों रखी है। तो उसमें से कुछ लोगों ने थोड़ा डेयरिंग करके पूछा कथाकार को कि आप शुरू करने से पहले हमारी कुछ शंकाएं हैं उसका निरसन करेंगे। तो बोलते ठीक है बताइए क्या आपकी शंका है, क्या प्रश्न है। बोलते कि जो बाहर गुड़िया रखी है उसे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रखा है, उसका तात्पर्य क्या है। तो कथाकार बोलते ठीक है कथा शुरू करने से पहले हम बाहर जाते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाहर आते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं सबको कि ये पहला गुड़िया है, ये इसका शुल्क कितना है, निःशुल्क है। दूसरा गुड़िया है उसका शुल्क था 100 रुपया, तीसरा गुड़िया जो है उसका शुल्क था 1000 रुपया। तो जो कथाकार है उसने एक तिनका लिया और पहला जो गुड़िया है उसे कान में डाला, तो कान में नहीं गया, वो टूट गया और नीचे गिर गया। तो फिर ये कथाकार बोलते हैं देखिए ये श्रोता जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, इसमें से पहला जो है यदि आपने देख लिया, अभी दूसरा गुड़िया लिया, दूसरा तिनका लिया, कान में डाला, एक कान से डाला दूसरे कान से निकल गया, तो ये इसका मूल्य जो है 100 रुपये। तो ये दूसरा श्रोता है, इस प्रकार के होते हैं। तीसरा गुड़िया उठाया, वापस तिनका लिया और कान में डालने के बाद वो बाहर नहीं निकला, अंदर चला गया। तो ऐसे ये तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। तो पहला जो श्रोता है तो वो कैसे लोग होते हैं, तो एक बार एक कथा चल रही थी, तो उधर वो आंखें बंद कर कथा कर रहे थे और जैसे आंखें खोल रहे थे तो जो संख्या है थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। 2 घंटे बाद सिर्फ यही व्यक्ति बचा, बाकी सब चले गए थे। उसे इतना आनंद हुआ, इतना प्रेम उसके प्रति निर्माण हुआ, उठकर उसके पास गया, बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आप 2 घंटा यहाँ पर बैठे हैं, तो बताइए कि कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा। तो व्यक्ति बोलता है कौन सा प्रसंग। बोले तुम इतनी देर बैठे थे कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो सुना होगा। बोले मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर वो कथाकार पूछते क्यों बैठे थे यहाँ पर। बोले जिस जगह पर आप बैठे थे वो आसन मेरा है, तो मुझे घर लेके जाना है, तो जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक मैं कैसे ले जा सकता हूँ। तो ये उदाहरण जो है, जो पहले गुड़िया जैसे व्यक्ति की है, जो लोग कथा में तो बैठ जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है और पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर है, लेकिन कान के अंदर कुछ जाता नहीं, इसका मतलब जाने नहीं देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आ जाते हैं उनका कोई ध्यान, मतलब ऑलरेडी कुछ चल रहा होता है, यहाँ पर बैठे हैं लेकिन कुछ तो कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, अभी भागवतम के बाद मार्केट जाना है सीधा, वहाँ से कुछ लेके आना है या फिर इसके बाद कुछ दूसरा कुछ करना है, तो ऑलरेडी वो थॉट्स चल रहे हैं और यहाँ का जो चल रहा है वो सब बाउंस हो रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहे। तो ये पहले प्रकार के श्रोता हैं। दूसरे प्रकार के श्रोता जो तिनका जो है एक कान से दूसरे कान तक जाता है, तो जो यहाँ पर बैठते हैं कथा में बैठते हैं सुनते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर जाते हैं चला जाता है, मतलब इस कान से आता है इस कान से निकल जाता है। और तीसरा जो श्रोता है वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो अपने अंतकरण में लेते हैं और अपने कार्यों से उसको बाहर निकालते हैं। तो हमें जो चातक पक्ष की तरह बनना चाहिए कि सिर्फ भागवत कथा ही सुननी चाहिए। तो हालांकि पानी बहुत जगह पर रहता है, नदियों में रहते हैं, जलाशय में रहते हैं, समुद्र में रहता है, लेकिन चातक पक्षी जो है सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। अभी दूसरा श्रोता जो है हंस की तरह होते हैं कुछ। तो हंस का क्या स्पेशलिटी होता है कि पानी का पानी, दूध का दूध। कौन सा भी आप दूध देंगे तो उसका वो सिर्फ दूध ले लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो ऐसे कुछ श्रोता होते हैं वो मनोरंजन के लिए आते हैं, कथा सुनी, कथा में हाँ कौन सा स्टोरी, कौन सा जोक, कौन सा ये याद रहेगा, या फिर किसी और के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, अरे आज प्रवचन बहुत अच्छा था, आपके लिए था, आप सुना एक बार। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मनोरंजन। कभी कभी लोग मंदिर में आते हैं, बोलते हैं अरे घर में कुछ टीवी में भी अच्छा प्रोग्राम नहीं है, कुछ फंक्शन भी नहीं है, बोर हो गए, बेटर के मंदिर में आते हैं, प्रसाद भी मिलेगा, थोड़ा मनोरंजन भी होगा। तो ऐसे प्रकार के कुछ श्रोता होते हैं। हम देखते हैं कि अनुभव है मंदिर में भी, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे जो भीड़ कब होता है, 1 बजे भीड़ हो जाती है बहुत, तो लोग कुछ कारणों तो आ जाते हैं। तीसरा प्रकार के श्रोता है वह तोता। तोता जो है सुनता है और बोलता है, मतलब जो भी उसके सामने आप बोलेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, वो सुनते हैं और बोल देते हैं। तो वैसे सेम तोता जो है रिपीट करता है, तो वैसे कुछ कुछ श्रोता क्या करते हैं, सुनते हैं और उसे रिपीट करते हैं। चौथा उदाहरण है मछली का। जो मछली है उसमें विशेष गुण है कि पानी के अंदर रहने के बाद भी कभी पलक वो झपकते नहीं है। कभी ऐसे देखाएंगे कि मछली साइड में गई है और सो रही है, ऐसा भी कभी देखा नहीं है। तो ये उदाहरण दिया जाता है, जो श्रोता है क्लास में बैठते हैं लेकिन बिना आँख झपके वो सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तो ये 4 प्रकार के चातक पक्षी हो गया, हंस, तोता और मछली। तो अभी देखेंगे प्रतिकूल श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। एक है भेड़िया, दूसरा है कौवा, तीसरा सांड, चौथा है ऊंट। ये 4 प्रकार के हैं। तो भेड़िया, तो जो भेड़िया होती हैं वो उनका सुगुण में भी सद्गुण या दुर्गुण बोल सकते हैं, वो बिना वजह आवाज निकालते हैं। कोई जरूरत नहीं होता है कि आवाज निकालना है नहीं निकालना है। अगर आप अभी मायापुर जाएंगे तो उधर रात को 7-8 बजे के तो आवाज आने चालू हो जाता है, स्पेशल अभी विश्वोद्यान में या गीता भवन में रहते तो आवाज चालू हो जाता है। तो हालांकि जरूरत नहीं होती है लेकिन आवाज देना चालू हो जाता है। वैसे हम प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे अमेरिका में शुरुआत में, तो लोग आते थे, बैठते थे, कभी कभी बैठकर उठ जाते थे और कुछ बोलते थे, तो देख सकते कैसे बिना वजह जो बीच में बोल जाता है। तो वैसे ये श्रोता होते हैं। दूसरे कौवा, कौवे जो हैं वो हालांकि इतना अच्छा बगीचा है वहाँ पर जाने के बजाय अगर घंटा गाड़ी आ जाती है, घंटा गाड़ी मतलब जो कॉरपोरेशन का कचरे का गाड़ी होता है, वो देखते ही सब कौवे एक दूसरे को बुलाते, बोले इधर आ जाओ सब लोग। तो ऐसे हालांकि वो इधर बैठे हैं, हालांकि बाजू में कथा चल रही है, लेकिन वे उधर जाने के बजाय दूसरा कुछ सुनने में व्यस्त रहते हैं। तीसरा है सांड। जो सांड होता है उसे सिर्फ खाने के लिए चाहिए, आप हलवा दो या घास दो, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, सिर्फ पेट भरना चाहिए और खाना है बस। तो ऐसे कुछ श्रोता होते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, भगवान के बारे में बताओ, कुछ संस्कार आस्था जो भी सब चलेगा, सिर्फ सुनना है, ऐसे लोग रहते हैं। चौथे हैं ऊंट। जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में रहता है, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन देखता है कुछ हरे पत्तियाँ दिख रही हैं और उसके बाजू में कांटे भी होते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कांटे की तरफ, तो कांटे के साथ उस हरी पन्नों को खाने लगता है और खाते खाते उसके मुंह में खून आता है और उसे लगता है कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक है, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे जो श्रोता है ये कांटे रूपी ज्ञान लेकर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्चुअली शॉर्ट में बता रहा हूँ, अंत में श्रवण के 6 लाभ बताकर हम एंड करेंगे, समय हो रहा है। तो श्रवण के 6 लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ जो है, हमारे अंदर जो कृष्ण के प्रति अनाकर्षण पैदा हुई है वो नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं श्रवण से, भागवत श्रवण से। दूसरा है जो इंद्रदुप्ति के प्रति आकर्षण होता है उसका दमन हो जाता है। तीसरा जो है सत्व, सत्वगुण बढ़ने लगता है। चौथा है सत्वगुण बढ़ने के बाद हमारा हृदय शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। पांचवा जो है हमारे अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है वैसे ही हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत होने लगता है। और अंत में छठा जो है फिर हम भक्तों के प्रति प्रेम जो है वो जागृत होता है। ऐसे ही छह लाभ होते हैं श्रवण के। तो भी यहाँ पर समय हो गया है तो मैं आराधन को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि हम जो भी टारगेट लिए हैं वो पूरा कर सकें, जो भी हमारा टारगेट है वो पूरा हो और सबसे अंत में हम आए। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि टारगेट कितना है। टारगेट 15,000 है तो 15,000 टारगेट, 15,000 टारगेट पूरा हो और मैं सबसे लास्ट आऊँ, या ऐसे में आपके प्रार्थना करता हूँ।